तो आज के इस 21 फरवरी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है पीवी दोषी हॉस्पिटल में। हरे कृष्णा। जब मैं भगवान के नाम का अभी कीर्तन कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि इतना बड़ा भाग्य है, ड्यूटी में कीर्तन करने को मिल रहा है, ऑन ड्यूटी। हाँ बोलिए, आप बैठे सामने बैठे। कैसी कौन सी जगह है इस दुनिया में जो ड्यूटी में सत्संग होता है, ड्यूटी में भगवान का नाम का कीर्तन कर सकते हैं ऑफिशियल पगार के साथ। एक स्वप्न हो सकता है, जैसे आप अगर स्वप्न देखेंगे कि टाटा कंपनी जो है, उनकी जितनी भी कंपनियां हैं, 500 कंपनियां हैं, वो सब कंपनी में सत्संग शुरू होगा ऑन ड्यूटी। सपना अच्छा है लेकिन कितना मुमकिन है? चलो टाटा में भी मुमकिन हो गया क्योंकि वो टाटा का कल्चर अच्छा है, बहुत ईमानदार कल्चर है। रिलायंस में होगा ऐसे सोचेंगे तो सपना अच्छा है लेकिन नामुमकिन लगता है। इस कलयुग में तो लगता नहीं, मुश्किल है। नामुमकिन तो कुछ नहीं लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अपने हॉस्पिटल में वो जो इम्पॉसिबल चीज लगती है आपको, वो ऑलरेडी हो रही है। अगर आप सोचेंगे कि हिंदुजा हॉस्पिटल में अभी वो पूरा भक्तिवंद ऐसा हो जाएगा, स्पिरिचुअल केयर हो जाएगा उसके, हो सकता है। लेकिन आज के तारीख में बोलेंगे कि वहाँ पर ऐसा ना जन्माष्टमी मनाई जा रही है, हिंदुजा से लोग यात्रा में जा रहे हैं, स्पिरिचुअल केयर के लोग यात्रा में जा रहे हैं, हाँ एंड ऑफ लाइफ केयर दिया जा रहा है, भगवान का मंदिर है उधर, ऐसा सब सोचेंगे तो लगेगा इम्पॉसिबल है ये। वैसे मैं एक एक चीज़ लेके बैठूंगा ना भक्ति विधान में जो हो रही है, और वो एक चीज़ कहीं हो सकती है कि आज सोचेंगे तो आपको लगेगा इम्पॉसिबल है, कैसे हो सकता है। लोग बोलेंगे अरे एक घंटा ऑन ड्यूटी आप वेस्ट कर रहे हो, उतना लोगों को काम पे लगाओ तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, ज़्यादा माल बिकेगा, बिजनेस बढ़ेगा। उसमें से एक घंटे लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 लोग और 11 बोलने वाला आज बैठे, कभी कभी 80 लोग भी होते हैं संध्या जागृति भक्ति विधान में। 80 लोग अपना एक घंटे का तनख्वाह फ्री में ले रहे हैं, यहाँ बैठ के वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं, बिजनेस आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब बंद करो सब कुछ, ही बिजनेस करो, बिजनेस के लिए आए, माल बेचने के लिए आए। मेरी एक फ्रेंड था उसका एक मम्मी है, तो कहते ये क्या आप लोग दो घंटा जप करते हैं, हम लोग वो 2 घंटे में समाज सेवा करते हैं, ज्यादा यूजफुल है। ऐसा बहुत आर्ग्यू करती थी मेरे साथ, अच्छी माता जी थी, बहुत ब्राह्मण, एकदम सिंपल, नाइस, सिंसियर, प्रामाणिक। लेकिन उनका हमेशा एक था कि हम ही नहीं करते, दो दो घंटा जप नहीं करते हम लोग, वो समय हम लोग लोगों को सेवा में देते हैं। तो मैंने उनको कई बार समझाया कि जो सेवा करने की प्रवृत्ति है ना, अच्छी प्रवृत्ति, वही इससे आती है पहले। अगर मैं खुद शराब पीता रहा हूँ, सिगरेट पीता रहा हूँ, मांस खाता रहा हूँ और कुछ करता रहा हूँ और समाज सेवा करता रहूं तो कैसे मेरी प्रवृत्ति अच्छी बनेगी? लेकिन जब करने से मेरी प्रवृत्ति स्वच्छ हो जाती है, प्रामाणिक हो जाता हूं मैं, ट्रुथफुल, सत्यवादी, सत्य बोलने वाला बनता हूं, कभी झूठ नहीं बोलता, और जो करूंगा भगवान के नाम से लोगों के उद्धार के लिए करूंगा, टेम्पररी काम नहीं करूंगा, सही सेवा करूंगा लोगों की, ये सब जानकारी जो है ना ये जब से होती है। आप बोलेंगे रात में 8 घंटा क्यों सोते हैं आप लोग, कितना वेस्ट ऑफ टाइम है, कितना बिजनेस रात को कर सकते हैं, इतना 8 घंटे का समय जो एक एक घंटे में इतना इनकम हो सकता है, तो उसका उत्तर क्या देंगे? अरे शरीर को चलाना है तो सोना जरूरी है, अगर 8 घंटा सोएंगे तो 16 घंटा आप जाग सकते हो, लेकिन 24 आवर्स जगेंगे तो कितना दिन जाग सकते हो? 24 आवर्स 2 दिन मैक्सिमम, तो शादी घर में भी तो शायद 3 दिन नहीं सोया, चलो क्योंकि शादी हो गई उस दिन जो सोएगा ना 3 दिन बाद उठेगा और कि नहीं, ऐसा हमने भी किया है हमारे घर पे और भी लोगों को देखा है, जब शादी हो गई तो फिर 3 दिन तक सो ही रहे हैं, वो उठ ही नहीं रहे, तो हमने कितना बिजनेस लॉस किया आपने कितनी छुट्टी वेस्ट की, लीव लेके सो रहे हैं घर पे, क्या पागल हो गए आप लोग? लेकिन शरीर का एक साइकिल है ना, उसके अंदर रेस्ट देना ही पड़ता है शरीर को, उसी तरह से आत्मा का भी एक साइकिल है, उसको आप आत्मा का पोषण दोगे तो उसका आध्यात्मिक काम करेगा। अभी उन्हें वॉकिंग जरूरी क्या है, आधा घंटे में कितना काम कर सकते हैं हम लोग, लेकिन आधा घंटा वॉकिंग नहीं करेंगे तो जल्दी मर जाएंगे, इसका क्या, जिएंगे नहीं। लेकिन अगर आरोग्य लेना है आपको, कैंसर को दूर रखना है, तो आपको वॉकिंग करने को जाना ही पड़ेगा, कितना भी बिजी रहेंगे आप। मतलब कितना घंटा खाना खाते हो आप, दो दो घंटा डाइनिंग टेबल बैठते हो, वेस्ट करते हो टाइम। तो आप बोलेंगे कि अच्छी तरह चबा के खाएंगे तो आगे हेल्प मिलेगी ना, या बकाबक खाएंगे तो बीमार पड़ जाओगे आप। तो जैसे खाने का टाइम होना चाहिए, आप बोलेंगे मेरा कॉन्स्टिपेशन हो गया है ना, आधा आधा घंटा मुझे बाथरूम में बैठना पड़ता है। बोले कितना वैल्यूबल टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, उसमें कितनी पढ़ाई हो सकती है, हाँ कितने इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको बीमारी है तो आपको बैठना ही पड़ेगा, आप फिर उस बाद में जाऊँगा ही नहीं, चलो जब होगा 8 दिन के बाद देखूँगा, ऐसा हो सकता है क्या? जैसे प्रातः विधि है, स्नान है, खाने पीने का समय है, सोने का समय है, एक्सरसाइज का समय है, वो आपके 8 घंटा चुस्त सेवा करने के लिए जरूरी है कि नहीं? अल्टीमेट सब लोग मिलकर 8 ही घंटा सेवा करते हैं, लेकिन उसके लिए कितना डेकोर है, खाने पीने का समय है, सोने का समय है, रेस्ट का समय है, योगा का समय है, एक्सरसाइज का समय है। उसी तरह से मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना है तो ये बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर ही अच्छी चेतना बनेगी, अच्छा भाव बनेगा, दुखों को कष्टों को झेलने की शक्ति मिलेगी, सहन शक्ति बढ़ेगी। लेकिन ये इतनी ज़रूरी चीज़ करने के लिए आजकल लोगों का जीवन शैली ऐसा हो गया है कि टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में 12 घंटा हर एक आदमी को काम करना है, अच्छा लगे या बुरा लगे 12 घंटे में भी पेट नहीं भरता है, ज़रूरतें पूरी नहीं होती है, होती क्या? पत्नी को भी निकलना पड़ रहा है घर से, मुझे भी हाथ बटाना पड़ेगा, क्योंकि 3-2 बच्चे हैं और 2 हम हैं, 4 मोबाइल लगने वाले हैं हर एक आदमी को, हर एक का डेटा पैक है, उसको कॉलेज जाना है, उसको स्कूटर देके दिया है, इसको स्कूटी दिया है, उसको काइनेटिक होंडा दिया है, हमको भी कुछ एक चाहिए साथ में जाने के लिए काम पे। उसको कहते हैं मल्टी कंज्यूमरिज्म, मतलब एक ही घर में 2 टीवी है, एक ही घर में 2 स्कूटर है, एक ही घर में 2 कार है ना, हर एक चीज़ डबल डबल है घर पे, क्योंकि वो क्या है ना, शेयर नहीं कर सकते ना, मुझे वो चैनल देखना है, आपको वो देखना है, तो उसके लिए खर्चे बढ़ते हैं ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात काम करना पड़ता है। ये कलयुग का बेसिक प्रॉब्लम है आज का, आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन आप इसी के चक्कर में सब लोग फंसे हुए हैं। कोई गरीब से गरीब लोन है, उनको कष्ट है, लेकिन फिर भी ना सब बच्चों के पास में ऐसे हाईफाई मोबाइल है, उसके अंदर हाईफाई डेटा पैकेज है, उसको सब कुछ करना चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए, ट्विटर चाहिए, फेसबुक चाहिए, ईमेल चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, हर जो फैसिलिटी, हर ऐप जो है उनको चाहिए, एवरीथिंग दे वॉन्ट, उसके लिए पैसा लगता है ना उसके लिए, और वो ही एक खर्चा होता है कम से कम 8-10 हज़ार रुपया हर महीने का, बाकी खाना पीना उसके बाद में, कपड़ा लगता उसके बाद में, पिकनिक बाद में, वड़ा पाव उसके बाद में, तो कितना हो गया। हमारे पिताजी ना, हम लोग 10 जन थे घर पे, 7 बच्चे, 1 दादी और माता पिता, ऊपर से पिताजी के ऊपर मेरी विधवा आत्या, बुआ और उसके 4 बच्चे, 5 कितने हो गए, 15 लोग थे हमारे पिताजी के ऊपर। आत्या रहती थी कहीं जगह पर, लेकिन उसका पूरा मेरा पापा संभालते थे, तो 15 लोगों का काम एक अकेले पापा इनकम थे, एक छोटी दुकान थी हमारी, मुझे अभी भी याद है, कुछ 1500 रुपया महीने का उनका इनकम था उस समय, उस समय भी छोटा था वो बहुत, और इतने में वो 15 लोगों को पालते थे। और कभी मुझे अभी भी याद है, कभी भी उन्होंने हमको कभी खाने को कम नहीं दिया, मतलब अभी नहीं पैसे नहीं है तो अभी एक ही रोटी खाओ, ऐसा कभी भी उन्होंने नहीं दिया, सब लोगों को अच्छा खाना खिलाया पिलाया और अच्छी कसरत करवाई, और कभी भी सबको स्कूल भेजने समय ऐसा बोला नहीं कि अभी फी है ही नहीं मेरे पास, जाओ टीचर से बोलो पैसे नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने सालों में MBBS तक, 2 भाई MBBS हो गए हम लोग, सब ग्रेजुएट हो गए बाकी सब, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि नहीं अभी टीचर को बोलो कि 10 दिन के बाद फी देंगे, या किताब नहीं आ सकती अभी आपकी, 8 दिन के बाद आई, ऐसा कभी उन्होंने नहीं दिया। मैं बेसिक मूलभूत चीज़ें सब दी उन्होंने, और सबको अच्छी तरह से अष्टपुष्टचर्य दिया और अच्छी तरह से पढ़ाया। अभी वो कैसे हो सकता, कैसे हुआ, क्योंकि तभी मोबाइल वगैरह नहीं था, ये सब फालतू एक्सपेंसेस नहीं थे उस समय, बेकार की हम बोलते ना चोचले, मराठी बोलते ना हम लोग, बेकार के नई चीज़ नहीं थी, कि सब लोगों को वो पिकनिक ही जाना है और यही करना है, हमको यही जूता पहनना है, सब लोग स्टाइल है, अभी पॉइंटेड जूता आ गया था मे बी इस टाइम पे, वो पॉइंटेड जूता चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। बेसिक एम्यूनिटीज खाने का अच्छी तरह से, हर सीजन में आम खाने का प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नखरा नहीं करने का, इन शॉर्ट मराठी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, नखरे नहीं करने चाहिए, बाकी बेसिक मिलना था। बट अभी की जिंदगी कैसे हो गई है, एक बच्चा है लेकिन नखरे इतने हैं ना, इतने खर्चे हैं उसके, दोनों मम्मी डैडी भी लॉक करने के बाद भी ना पुरता नहीं है उनको, और वो चीज़ हर चीज़ के लिए लोन है ना, मोबाइल लोन पे है, फ्रिज लोन पे है, गाड़ी लोन पे है, टैक्सी लोन पे है, इसी लोन पे है, वो लोन पे है, वो सब कुछ हर महीने भर रहे हैं, फिर वो पॉलिसी बना कर रखे उसमें भी डालना है। तो मैं क्यों क्यों बता रहा हूँ, ये सब व्याप बोलते हैं उसको, व्याप बेकार के व्याप है, इनको जरूरत नहीं है, लेकिन उस व्याप को संभालने के लिए दिन रात आदमी स्लॉग करता है, ऊपर से काम से आने के बाद घर में भी कुछ दो घंटा कुछ करता है, कोई लिपस्टिक बेचता है, कुछ शैम्पू बेचता है, तो कुछ और कुछ बेचता है, थोड़ा दो पैसा और जुड़ जाएगा। तो ये सब करने में 12 घंटे अगर गए जाएंगे तो शक्ति कहाँ बचेगी, वैसे भी कलयुग के लोग आलसी होते हैं, उसको उत्साह नहीं होता है, लेट उठने वाले होते हैं, देर से सोने वाले होते हैं, कहाँ शक्ति है उनके पास, और सब पाव और ये सब खाने वाले लोग में शक्ति कहाँ से आएगी, ऐसा सब घटिया खाना खाने वाले लोग सब लोग हैं ना, वड़ा पाव खाएंगे रोज, तो शक्ति किधर से आएगी, पोषण कहाँ से मिलेगा, तो वैसे भी शरीर कमज़ोर, वैसे भी उत्साह नहीं है, लेजी, इसमें 12 घंटे अगर जबरदस्ती लगा दिए तो फिर आपको तो 50 रीज़न है नहीं करने के लिए, तो टाइम ही नहीं है, टाइम रखा ही नहीं, आएगा तो फिर 12 घंटे तो तुरंत टीवी चालू करेगा, एक घंटा जो बकवास चल रहा है वो देखेगा, उसको बोर होके बंद करेगा, बंद हो जाएगा। और जो खाना खाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं वो भी टीवी देखते हुए देख खाएगा, और देखा क्या नहीं प्लेट में क्या दिया है, वो अपना ऐसे ही खाएगा, है ना। देखो आप ना बीवी के साथ में है, ना बच्चों के साथ में है, ना खुद के साथ में है, टीवी के साथ में बैठा हुआ, पूरी जिंदगी ऐसे गुजरती है आजकल, कोई किसी को टाइम नहीं बात करने। तो उसमें अगर बोलेंगे कि आपको भगवान का नाम लेना है, बोले क्या इम्पॉसिबल है। तो ये एक्चुअल आज की स्थिति है सब लोगों की, चाहे डिवोटी है ना ही डिवोटी है, मोर और लेस यही है, उठ के पहले मोबाइल देखते हैं, सोने के बाद भी पहले भी मोबाइल देखते हैं, दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं, और उसमें ही ज़्यादा अटेंशन है, सबकी ज़िंदगी यही है। इस सिचुएशन में अगर जीवन का उद्देश्य बदल के बातें करनी है तो मूड ही नहीं बनता है उसका, कब मूड बनेगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों जी रहे हैं, क्या लक्ष्य है जीवन का, ये सब तो इतनी ऊंची बातें हो गई है कि अभी कब मूड बनेगा उसका, है ना। अपने घर पे अभी बाथरूम तोड़ के नया बनाने का है, वो डिस्कस करने के लिए मूड ही नहीं बनता है, आज बिजी है, कल बिजी है, परसों बिजी, संडे को के जाना है, तो कब बैठना है उसके लिए कि भाई ये बाथरूम का क्या करना है, एक साल हो गया करना है, करना है, एक साल हो गया, मूड ही नहीं बना चीज डिस्कस करने के लिए। वैसे जीवन का उद्देश्य तो बहुत दूर की बात है, बाथरूम तो सामने दिख रहा है, लेकिन जीवन का उद्देश्य तो बहुत दूर की बात है, पति पत्नियों को बैठ के डिस्कस करने का मौका नहीं मिलता क्या करना है लाइफ में। ऐसे स्थिति में एक ऐसा अस्पताल है जहां पर आप लोग काम कर रहे हैं, जहां पर ऑन ड्यूटी आपको समय नहीं, घर पे टाइम बिल्कुल नहीं है, ऑन ड्यूटी आपको माहौल भी मिला है, मूड भी बना के दिया है, टाइम भी दिया है, ऑन ड्यूटी भी है, और सुनने को मौका मिल रहा है। ये मैं सोच रहा था कि कितनी भाग्य की बात है, मेरे लिए कितनी भाग्य की बात है कि मैं ऑन ड्यूटी बैठकर यहां पर 5 मिनट प्रेम से कीर्तन कर सकता हूं। अगर अंबानी के हॉस्पिटल में आप 5 मिनट कीर्तन करोगे तो आपको मेमो मिलेगा कि रोज आके 5 मिनट कीर्तन करता है, सबको डिस्टर्ब करता है और ऑन ड्यूटी का टाइम वेस्ट करता है, क्योंकि वही ड्यूटी यहाँ पर, वही काम यहाँ पर करेंगे तो आपको यहाँ पर अप्रिसिएशन मिलेगा। हर मीटिंग हमारी कीर्तन से शुरू होती है, रूल ही है, मैनेजमेंट का हो, कोर ग्रुप हो, ट्रस्टी मीटिंग हो, या डिपार्टमेंटल मीटिंग हो, या हाउसकीपिंग का हो, या नर्सिंग का हो, सब में प्रेयर होती है, मैसेज होता है स्पिरिचुअल, और आगे मीटिंग शुरू होती है। लोग ना दंग रह जाते हैं, अभी एक लड़का अभी बड़ा एक कंपनी का बड़ा अफसर है, वो लड़का ही है, मतलब बिग ऑफिसर है, चेयरपर्सन है उस कंपनी का, वो यहाँ पर स्टडी करने के लिए आए हैं, भक्ति विधान में क्या चल रहा है, तो हर चीज़ का देखकर दंगे रह रहे हो, एवरीथिंग ही इज़ जस्ट सरप्राइज कि ये कैसे हो सकता है, सबको मिलकर गया, मीटिंग में गया, हर चीज़ में, एनएबीएच की मीटिंग में गया, एथिक्स कमेटी मीटिंग में या बड़ी बड़ी मीटिंग में गया वो, सब में देखा कि यही कल्चर है यहाँ पर। बोले मुझे ऐसा एक हॉस्पिटल इंग्लैंड में खोलना है। लास्ट मेरी मीटिंग थी, मैं था नहीं यहाँ पर। तो हम लोगों को ना ये रोज यहाँ पर हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कुछ नया लगता है यहाँ पर, क्या है ठीक है ना। लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं ना, दे आर वेरी सरप्राइज टू सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। और ये आज सब बताने का कारण ये है क्योंकि अभी चैतन्य महाप्रभु की जन्म तिथि बहुत पास में आ रही है, 2 तारीख को गौर पूर्णिमा है। ये सब उनका कमाल है एक्चुअली। उन्होंने आपको बताया कि आपको ना घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तपस्या करने के लिए घर छोड़ के, पैसा छोड़ के, फैमिली छोड़ के, जंगल में जाके गुफा में रह के एक गाजर खा के तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं। कितना रिलीफ दिया आपने उन्होंने, है ना, सच ए बिग रिलीफ। ओह आई एम हैप्पी नाउ। बोले क्या करना है आपको, जहाँ पर है ना वहीं रहो, जो कर रहे हो ना वही करो, खाली भगवान का नाम जोड़ दो उसके साथ। कैसा भी करके आपका शेड्यूल आपके हाथ में है, आप उसके मालिक हो आपके शेड्यूल के, कैसा टाइम निकालना है आप देखो। जैसे हर औरत को मेकअप करने का टाइम मिलता है कि नहीं, या हर आदमी को कुछ और करने के लिए टाइम मिलता है ना, उसको जो करना है खुद को, वैसे ही आपका टाइम टेबल आपके हाथ में। वो क्या कह रहे हैं भगवान कि आप ना थोड़ा समय निकालो और बैठ के करो, और बाकी समय सब करते करते करो। कैसे, तुम सब्जी बना रहे हो आप, तो मुख से वो कैसे बहना भाई कसी, बाकरी बाजते ना, ये बाकरी बाजता बाजता थी देवाचना नाव गई थी, बेटो बाचा नाव गई। वैसे ही आप जो कर रहे हो वैसे करते करते कपड़ा धो रहे हो या कुछ बर्तन मांज रहे हो, भगवान का नाम मुख से लेते रहो, पांडुरंग हरि, राम कृष्ण हरि, हरे कृष्णा, जय राम श्री राम, जय जय राम करते रहो। वो मुमकिन है ना आपको, उस समय तो आपका हाथ ही एंगेज है, मुंह खुला है आपका, मुंह फ्री है, उतना ही कह रहे हो। पहले बैठ के करो, बाद में ऐसी आदत बनेगी कि सब करते करते भी करो। ये उन्होंने सिंपल फॉर्मूला बताया, और बोलते इसी की यही करने से आप लोग का जीवन परफेक्ट होगा और जीवन का उद्देश्य भी प्राप्त करोगे। हम लोग एक्चुअली ना वैसे देखेगा तो बहुत टाइम फ्री रहते हैं। देखो ट्रेन में लोगों को सफर इतना लंबा करना पड़ता है काम के लिए, वो और एक कलयुग का लक्षण है। पुराने जमाने में लोग अपने जहां रहते थे ना वहीं उनका काम हुआ करता, खेती भी वही है, दुकान भी उधर ही है, बाजार भी उधर ही है, सब कुछ उधर ही है। कोई ऐसा हुआ नहीं था पहले कि कोई दूर प्रदेश में काम करने जा रहा है। लेकिन अभी वो कहते हैं ना ग्लोबलाइजेशन, जागतिकीकरण बोलते हैं, उसकी वजह से अभी एक लड़का इंग्लैंड में है, एक लड़की ऑस्ट्रेलिया में है, पापा एक कंट्री में है और चाचा दूसरी कंट्री में है, और साल में एक बार दिवाली में कैसे भी करके मुश्किल से दिवाली में एकत्र आते हैं एक दिन के लिए, बस बाकी सब लोग वापस उड़ जाते हैं। ये कलयुग का और एक लक्षण है, सब कुछ दूर दूर हो गया। अभी किसी की नौकरी दुबई में है, किसी की नौकरी इंग्लैंड में है, किसी की दिल्ली में है, किसी की कानपुर में है, किसी का किधर ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा नहीं था पहले। ये कलयुग का एक विशेष लक्षण है कि पेट भरने के लिए लोगों को दूर दूर कोस कोस मील जाना पड़ता है, समुद्र भी पार करने पड़ते हैं पेट भरने के लिए। पहले जमाने में कम समय में अपनी जगह पर आपका सब कुछ होता था काम, लेकिन अभी ऐसा नहीं है ना। एवरेज आदमी यहाँ का 2 घंटे जाने में 2 घंटे आने में खर्च करता है। जा रहा है तो क्या करता है वो, कॉन्स्टेंट मोबाइल में देखते रहता है 2 आवर्स। अब बोलता टाइम नहीं मेरे पास, अगर आपको करना है तो बहुत सारा फ्री टाइम है। हम लोग तो बस में खड़े रहते ऐसे एक हाथ में पकड़ के, तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते, बैठे में जगह मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, ट्रेन में खड़े हैं तो भी ठीक है, बैठेगा तो ठीक है, लेकिन हमारा चलते रहते हैं। लोग बोलते क्या आप लोग चलते फिरते माला करते हो, लेकिन ये भी कोई माला हुई, लेकिन चलते फिरते आधा ध्यान जप में है समझो, आधा ध्यान कहीं और है, आधा ध्यान जो फ्री है वो तो लगा दिया ना उसके अंदर, आपको तो पूरा ध्यान कहीं बटा हुआ है, पूरा ध्यान आपने माया को दे दिया है। हमारा आधा ध्यान बिजी है, आधा ध्यान हरे कृष्ण तो है ना कम से कम, अच्छा है कि बुरा है? आपका आधा ध्यान तो सेक्सी मूवी सुबह सुबह देख रहे हैं 5 बजे के ट्रेन में बैठ के, मैं कभी देखता ना क्या देख रहे हैं, सर रोमांटिक मूवी 5 o'clock ट्रेन में, लोकल ट्रेन में बैठ के रोमांटिक मूवी देख रहा है, एकदम रोमांटिक हैवी रोमांस। तो वो 5 बजे के टाइम पे उसको वो देखने का टाइम है, लेकिन बोलेंगे भगवान का नाम लो तो टाइम नहीं। इसी को दुर्भाग्य कहते हैं। तो वो दुर्भाग्य को आसान करने के लिए भगवान ने बोला है कि आप चलते फिरते भी करो, लेकिन करो, मैं प्राप्त हो जाऊंगा। वो इतना आसान करने के बाद में इससे और भाग्य क्या हो सकता है। चमचे से आपको खिला रहे हैं, आपको खाली लेना है मुंह में और उसको अंदर डालना है बस, लेकिन वो बच्चा कैसे करता है? आप देते हो तो वो फुर्र करके बाहर फेंक देता है। वैसे हमारी स्थिति है, तो प्रेम से चिड़िया कौवा कबूतर दिखाते हुए, गाना गाते हुए, उसके पीछे पीछे भागते हुए उसको दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसको खाना नहीं है, और क्या कर सकती है, है ना। फिर क्या करते हैं, हाथ बांध के ऐसा नाक बंद करके डालते हैं मुंह के अंदर दवाई, है ना। तो ये हमारा भाग्य है। महाप्रभु जी की कृपा अगर आपको समझना है, चैतन्य महाप्रभु क्या कृपा है उनकी, यही कृपा है कि जिनके अंदर कोई योग्यता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है जिनके अंदर, उनको उद्धार कैसे करना है, वो रास्ता उन्होंने हमको दिया है। जो कहते टाइम नहीं है, कोई सद्गुण नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है भगवान के विषय में, कोई जानकारी नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, आलसी है, कम जीवन है, बहुत लॉन्ग शॉर्ट लाइफ है, बीमार जीवन रहता है, आलस्य भरा रहता है, और दुर्भाग्य कैसा है, सब कुछ मिलने पर भी उसको भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, ये दुर्भाग्य है। आसान करने पर भी इंटरेस्ट नहीं है, ये सारे जंजाल में भी उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाल के दिया है कि जिससे आप अपने आप को उद्धार कर सकते, जहाँ पर हो वहाँ कर सकते, बच्चे वाले हो नहीं बच्चे वाले हो, पैसे वाले हो नहीं पैसे वाले हो, सुंदर हो नहीं सुंदर हो, अमीर हो गरीब हो, जो भी कुछ हो, हर स्थिति में आप वो कर सकते हैं, ऐसा एक सुलभ मार्ग उन्होंने बना के हमको दिया है। और हमको बार बार उसको याद करना चाहिए, खास करके हम लोग जो सोलह माला जप करते हैं, नाम करते हैं, क्या रे अभी 30 साल हो गए, अभी अभी 30 साल में वही जप रहे हैं, कुछ नया कुछ है क्या, वही मंत्र है, वही सब कुछ है, वही चार नियम है, वही मंगल आरती है, वही भागवतम है, वही तिलक है रोज लगाने का है, कुछ नया है क्या, कुछ फॉर्मूला, कुछ नया डिश है कोई, ऐसा हमको लगने की संभावना है। क्योंकि जब नया कोई भक्त बनता है ना, तो बहुत थ्रिलिंग रहता है उसके लिए, आप लोगों को पता नहीं एक्सपीरियंस है कि नहीं, जब नए नए भक्त बनते ना, तो वही मंत्र इतना अच्छा लगता है, वही सब कुछ इतना अच्छा लगता है, वही सत्संग इतना होता है कि वाह क्या, हर एक बात को स्वीकार करते हैं हम लोग, लेकिन वही लोग कुछ देर के बाद में वही बात बोल रहे थे, वो हो गया कुछ नया बताओ। तो हमारा जरा हमारे लिए चैलेंज है कि हमको बोर हो सकता है, लेकिन फिर भी भगवान के नाम की विशेषता यह है कि बोर नहीं होता है, हम आलस्य करते हैं लेकिन बोर नहीं होता, क्योंकि नाम के अंदर इतना रुचि है भगवान ने दिया है। नाम जो करता है ना प्रेम से, उसको कभी नाम बोरिंग और पुराना और बासी लगता नहीं है, रोज उसको नया आनंद देता है। ये तो हम रोज मंगलाती को जाते हैं, वही गिरधारी भगवान है, वही सब कुछ है, वही जगन्नाथ जी है, वही वो आरती सेम में घुमाता है रहता है, उसके बाद ये वही टाइमिंग है, वही सब कुछ है, वही मंत्र गाना है, उसको वही प्रणाम करना है, फिर तुलसी आरती है, फिर वही है, कितना दिन वही करने का, कुछ नया फार्मूला है क्या, कि सुबह सुबह यज्ञ करने का, उसको और कुछ सुबह नया करने का, रोज का छोड़ देने का रोटी नहीं, हम लोग सालों साल से वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं। अगर उसमें रुचि और आनंद नहीं होता तो हम लोग क्यों फॉलो करते, बोले चेंज करो, जैसे कर कंपनी अभी हो गया 5 साल, अभी क्या है, सबको देख के बोर गया, चेंज करो कंपनी, कर सकते हैं आप, लेकिन हमने चेंज नहीं किया अभी, अभी क्या 10 साल गुरु हो गया, अभी चेंज करो, नया गुरु दे लो, कुछ नया सुनेंगे उसके बाद, कुछ नया अलग स्टाइल से कुछ बताएंगे, उनका स्टाइल अलग है बताने का, ऐसा भी नहीं ना, सेम गुरु है 30 साल से। इसका कारण यह है कि महाप्रभु चैतन्य की कृपा ही है ये, कि रोज जो आपको नाम दिया है उसके अंदर इतना आनंद भरा हुआ है, नया 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 नया, कि आप अगर थोड़ा सा सिंसेरिटी से करेंगे ना तो आपको बोर नहीं होगा, वो थोड़ी सिंसेरिटी आपकी तरफ से होनी चाहिए। और उनकी ऐसी विशेषता है कि उन्होंने केवल मनुष्यों पर ये कृपा नहीं किया है, मनुष्यों पर तो किया ही है, सबसे पापी लोगों का भी उन्होंने आसानी से उद्धार कर दिया है, किसी का वध नहीं किया है, धनुष बाण से या गोली से बंदूक से या बम बारूद से, ये राक्षस है उसको मारना चाहिए, जो उन्होंने पिछले अवतार में किया था, जो भी आया राक्षस बन के ना उसका खात्मा कर दिया उन्होंने, छोड़ा नहीं, हम लोग खाली कंस को जानते हैं, कंस ने कितने राक्षस भेजे, बाप रे सबका वध कर दिया, किसी को छोड़ा नहीं, सॉरी बोलने का मौका भी नहीं दिया, आया तो उड़ा दिया उसको। लेकिन वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु बनकर आए तो भयंकर पापी थे ना वो, जो पिछले जन्म में भी आए थे, दोबारा आए वो जगाए माताई बनकर, उनको मारा नहीं उन्होंने, उनको पाप शून्य कर दिया और भगवत प्रेम भी दे दिया ऑन द स्पॉट। इतना तो डिस्काउंट किसी ने दिया नहीं आज, किसी ने नहीं दिया, चैतन्य महाप्रभु ने दिया। अच्छा वो मनुष्यों की बात हो गई, अरे एक कुत्ते के पिल्ले को गले लगाया तो वो भी हरे कृष्ण बोलने लगा मनुष्य की तरह, चार पैर वाला कुत्ते का पिल्ला जो है ना दो पैर उठा के हरे कृष्ण मंत्र बोलने लगा और सबके आंखों के सामने मर गया, सबके आंखों के सामने चतुर्भुज विष्णु का रूप प्राप्त हो गया, विमान आया वैकुंठ से, वैकुंठ में बैठा और सीधा वैकुंठ चला गया और सब लोग देख रहे गंगा किनारे में, ऐसे कौन देख रहे हैं मन में, बाजार दुकानदार लोग, माताएं प्रभु जी लोग, जो ऐसे आश्चर्य हो गया उनका, अरे ये कुत्ता कैसे बोल रहा है हरे कृष्ण, तो सब पीछे पीछे देखने पर जा रहे हैं उसको, वो ऐसे दो हाथ ऊपर करके आप जैसे हरे कृष्ण बोल रहे हैं मंत्र और वो कीर्तन लीड कर रहा है, सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और भीड़ जमा हो रही है और वो गंगा किनारे पहुंचता है मार्केट में गुजरते हुए, सब लोगों को इकट्ठा अट्रैक्ट करते हुए अचानक वहां मर जाते हैं, कुत्ते का शरीर उधर ही है उसमें से निकलता है चतुर्भुज विष्णु दूत का शरीर वाला तेज वाला आदमी, उसको लेने के तुरंत वहां से विमान आता है, उसको एक्सेप्ट करते हैं विमान पे, स्वागत करते हैं उसको, तुरंत वैकुंठ ले जाते हैं। मतलब क्या, वो मनुष्य भी नहीं है फिर उस पर भी कृपा कर। फिर जब जगन्नाथपुरी से लौट के आ रहे थे, लौट के नहीं जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाने के लिए जा रहे थे, तो आज का झारखंड है ना तभी जंगल था, अभी राज्य हो गया वो रहने की जगह हो गई, पूरा घनदाट जंगल था उसके अंदर, खूंखार जानवर थे। वहां से ये महाप्रभु जा रहे हैं वृंदावन पर कीर्तन करते हुए, तो क्या हुआ मालूम है, हाथी शेर सिंह हिरण भालू भेड़िया ऐसे खूंखार जानवर बाहर आ गए और आपके हमारे जैसे कीर्तन में बोलने लगे और नाचने लगे। हाथी भी दो पैर ऊपर करके नाच रहे, सुंड ऊपर करके नाच रहे, सिंह भी नाच रहे, सब लोग बोल रहे हैं हरे कृष्णा, महाप्रभु हरे कृष्ण बोल रहे हैं, सब उसके बाद हरे कृष्ण बोल रहे हैं, पेड़ भी ऐसे से थर्रा रहे हैं उनका और फूल झड़ रहे हैं उसके, पेड़ पेड़ से, सोचो आप, तो अच्छी कहानी आपकी बता रहे हैं आप, अच्छा सोचकर आए आप, ये सब सोचना नहीं है, यह हकीकत है। और इतना सुंदर कीर्तन हुआ, महाप्रभु चैतन्य नाच रहे हैं और गा रहे हैं और सब जानवर जो है ना केवल नाच और गा नहीं रहे, एक दूसरे को गले भी लगा रहे हैं, जैसे हाथी और शेर गले लगा रहे हैं, दुश्मन भेड़िया और हिरण गले लगा रहे हैं, दूसरे को खरगोश और सिंह गले मिल रहे हैं प्रेम से और पुकार रहे हैं भगवान को, पागल हो गए आंखों से अश्रु बह रहे हैं। और ये सब देखते हुए क्या हो रहा है, पृथ्वी है ना पिघल रही है, पृथ्वी को भी अनुभव पहले नहीं हुआ था कभी, पृथ्वी भी पिघल रही है, उनके सबके चरणों के चिन्ह जो है ना वो पृथ्वी पर तैयार हो रहे हैं। जैसे आप अगर बहुत ऐसे चिकनी मट्टी के अंदर चले गए आपके पैर निशान पड़ेगा ना उसके अंदर, वैसे पृथ्वी ऐसे मुलायम हो गई और उस पर जो भी नाच रहे हैं वो हाथी के सिंह के अभी भी चरण चिन्ह है वहाँ पर, अभी भी है। झारखंड में जाएंगे तो बहुत सारे मिट गए लेकिन कई जगह पर संभाल के रखे हुए हैं, वहाँ पर वो चरण चिन्ह है, हाथियों के हैं शेर के भी हैं, वहाँ यात्रा होती है वो देखने के लिए। तो ये किसने किया क्या आज तक, ना राम ने किया ना कृष्ण ने किया ना नरसिंह भगवान ने किया ना वराह भगवान ने किया, कौन से भगवान के अवतार ने ये चमत्कार नहीं किया जो गधे को भी हरे कृष्ण मंत्र बुलवाया है, वो है चैतन्य महाप्रभु। इतनी कृपा है उनकी ना कि सभी जीवों का उद्धार किया उन्होंने, केवल मनुष्य का नहीं, तोताओं का बात करते करते उद्धार किया है, कोयल का किया है, मोर का किया है, बात करते करते उनसे बोलते बोलते उनको हरे कृष्ण बुलवा के उनका उद्धार कर दिया। जब वृंदावन में आए ना चैतन्य महाप्रभु तो उधर हाथी सॉरी गाय बैल भैंस बकरी और मोर पंछी जितने भी कोयल जितने भी पंछी है चक्रवाक है और क्या क्या 50 प्रकार के पक्षी हैं सब इकट्ठा हो गए और नाच रहे हैं। ठीक है अभी ये तो सब चलने वाले हैं ना जानवर, आपके साथ में पीछे पीछे आ सकते हैं, पेड़ क्या कर सकते हैं, वो भी जीव है ना लेकिन वो एक ही जगह खड़े हैं। तो पेड़ों मैडम क्या किया, पेड़ जहां खड़े थे वहां झुक गए और थर्रा के उन्होंने अपने फूल महाप्रभु के चरणों में बरसा दिए। ऐसा वर्णन देखे मैं तो जब पहली बार पढ़ा था ना तो भाव विभोर हो गया था मैं पढ़ के, कि पेड़ों ने जो उनको मुमकिन था वो किया, वो भाग नहीं सकते महाप्रभु के पीछे, लेकिन जहां पर थे किसी ने दंडवत किया उनको, किसी ने थर्रा के अपने पुष्प वृष्टि ऊपर किया, एक तरह से आंसू बहाए है ना उनके प्रकार से, वो पेड़ों का भी उद्धार हो गया उसी समय। इतनी कृपा और इतना सिंपल बना दिया उसको। एंड में वो ग्वाल बाल जो था ना, वो गोपाल जो चला रहा था गाय, वो गाय छोड़ने को तैयार नहीं, ऐसा मुश्किल से गायों को छुड़ाया महाप्रभु से, उनको आगे जाने दिया। और रस्ते में सब लोग ऐसे बीच बीच में आके ऐसे देख रहे हैं महाप्रभु को और बोल रहे हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यही हुआ है हर समय, जहां जाएंगे वहां पर महाप्रभु ने कृपा की है। और वही महामंत्र है जो हम लोग भी जप कर रहे हैं, जो सिंह ने भी किया और शेर ने भी किया और कुत्ते की बिल्ली ने भी किया और सभी जीवों ने किया। और क्या लाभ है उसका, अगर आप वो जब करेंगे और अनजाने में भी किसी भक्त का अपराध नहीं करेंगे, अनजाने में नहीं करेंगे, ये दो चीज करने से उन्होंने वादा किया है कि आपको मैं वैकुंठ लेके जाऊंगा इस जन्म के अंत में। क्या करना है आपको, मेरा नाम जप करना है और मेरे भक्त जो मेरा नाम जप करते हैं उनको हार्ट कभी दुखाना नहीं, उनके खिलाफ कभी पॉलिटिक्स नहीं करना है, उनके खिलाफ कभी उनको दर्द हो ऐसी बात नहीं करनी, ये सामने से भी नहीं करना है या पीछे से भी नहीं करना है, कूट कूट नीति नहीं करना है उनके साथ में। मेरे भक्तों को दिल दुखे, दर्द हो, पेन हो, ऐसा कुछ काम नहीं करना है। इतने दो काम करेंगे ना, बोलते मैं आपको भगवत धाम मेरे धाम में ले जाऊंगा। और अगर आपने कभी गलती से मेरे भक्तों का दिल दुखाया तो आपको छोड़ूंगा नहीं, ये भी बताएं। अनजाने में बहुत सारा कुछ होता है लेकिन वो ठीक है, लेकिन जानबूझ के कोई कुछ करेगा तो वो अपराध भगवान माफ नहीं करता। बोले जगाई मधाई ने जितने पाप किए थे ना, भगवान ने एक आलिंगन देके सब मुक्त कर दिए उसको, फिर भगवान ने स्वीकार कर दिया उस पापों को, है ना। जगाई मधाई थे ना, वो इतने पापी थे कि जैसे भगवान ने उनको आलिंगन दिया ना, सारे उनके पाप भगवान के शरीर में आए, तो भगवान की गोल्डन बॉडी है ना वो काली हो गई, एकदम निस्तेज ब्लैक ठिककर हो गई एकदम, तो सब दिखते रहे अरे ये लोग तेजपुंज हो गए दोनों, और ये को तेजपुंज थे वो काले हो गए, अभी क्या होगा। तो भगवान बोलते हैं कीर्तन करो, तो उन्होंने कीर्तन शुरू किया, सब लोग झूम झूम के गाने लगे नाचने लगे और सब लोग देख रहे हैं कि महाप्रभु चैतन्य भी गा रहे हैं, जो काले हो गए वो भी गा रहे हैं। और जैसे कीर्तन शुरू हुआ ब्लैक कलर धीरे 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 ऊपर से नीचे खत्म हो गया कुछ समय के बाद, और पुनः भगवान चैतन्य महाप्रभु एकदम गोल्डन एफलजेंट तेजस्वी हो गए। फिर कीर्तन रुक गया, फिर महाप्रभु ने एक भाषण दिया, उन्होंने बताया आपने देखा ना जब मैंने इनको स्वीकार किया गले लगाया तो इनके सारे पाप मैंने ले लिए, जब मैंने कीर्तन किया तो ये सारे पाप जो है ना मुझसे दूर चले गए। लेकिन भाइयों और बहनों बताया एक बात सुनिए सावधानी से, कीर्तन करेंगे तो ये पाप धुल जाएंगे लेकिन अवकाश में जाके जमा हो जाएंगे, जो मेरे भक्तों का अपराध करेगा उनके अंदर प्रवेश करेंगे, ऐसा बताया। जो मेरे भक्त का अपराध करेगा वो पाप जो ऊपर मैंने निकाल के ऊपर गए हैं ना वो नष्ट नहीं होंगे, उधर रहेंगे, वो आगे जाके जो भी अपराध करेगा, भक्त हो नहीं भक्त हो, जानता हो नहीं जानता हो, मेरे भक्त का अपराध करेगा तो उसके अंदर प्रवेश करेंगे। और पाप जब आपके अंदर प्रवेश करेंगे तो क्या होता है, यस हाँ यस, पाप अंदर आएंगे हमारे प्रवेश करेंगे तो क्या होता है, हाँ क्या करेंगे, और क्या होगा, प्रवृत्ति बदलेगी, और क्या होगा, हाँ भगवान की स्मृति हो जाएगी, और क्या होगा, हाँ वी विल गो टू हेल एज अ रिएक्शन, और पाप का फल मिलेगा ना आपको, मिलेगा ना, इसने बोला कि हेल में जाएंगे, हेल में तो आगे की बात है, ये मरने की बात हेल की आती है, अभी 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 भी मिलेगा आपको पाप का फल, मन शांति नष्ट हो जाएगी, बीमार पड़ोगे आप, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। हाँ नहीं नहीं, मतलब मर जाने की बात तो आगे की है, मैं आपको मरने के पहले की बात बता रहा हूँ। आज आपको समझो आपके पाप कहाँ से आपके अंदर प्रवेश किए, आपके पहले पाप तो है ही, उसका आप तो भुगत ही रहे हो, और वैष्णव का अपराध किया तो ऊपर के नीचे आपके अंदर प्रवेश करेंगे, तो क्या होगा, जो आपने नहीं किया है उस पाप का सजा भी आपको मिलेगा। मेनी मेनी ऑब्स्टेकल्स, सुख ही नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान कैसे होते हैं, मेरे भक्तों को जो मुझे प्रिय है उसको आप कष्ट देंगे तो आपको शांति कैसे दे सकता हूं मैं, चांस ही नहीं, सब हो जाएगा, आप जो पीड़ा है बोलो सब लग जाएगा। तो भक्तों का अपराध ये एक बाधा है इसके अंदर, वो अगर आप नहीं करते ना तो हम लोग बच सकते, और आसानी से भगवान नाम लेकर अपना उद्धार कर सकते, बहुत सिंपल चीज। और वैष्णव अपराध होता है ना, भक्तों का अपराध का दो चीज होती है, एक होता है जो भी आपने आज तक व्रत किया है, नियम पालन किया है भगवान के विषय में, वो आपका टूट जाएगा, तुरंत होगा ही नहीं आपसे, वो कल तक आपने किया लेकिन आज नहीं होगा आपसे। सौवरी मुनि ने पानी के नीचे रहकर रोज मछलियों को देखा होगा, नर मादियों का मिलन, लेकिन जब गरुड़ का अपराध किया उसके बाद पहली बार जब देखा ना मछलियों को संबंध करते हुए, बाहर आ गया, मुझे शादी करनी है, जो आज तक कंट्रोल किया था खत्म हो गया, वो वैष्णव अपराध करने से इतने सालों की तपस्या खत्म। तो जो आप पहले से कर रहे हैं भगवान के विषय में उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा आपका, और जो पहले आपने छोड़ के रखा था ना वापस चालू करेंगे आप, मांस खाना, स्त्री का संग, शराब, जुआ, आदतें, बुरी आदतें जो आपने छोड़ के रखी थी वो ऐसे आप पर हावी हो जाएंगी, आप लगता है छोड़ दिया मैंने इसको, कितना साल से नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, आज मुझे रहा नहीं जा रहा है, मतलब मछली खाना है मुझे, वो 20 साल पहले छोड़ा था पॉपलेट मुझे अभी खाना है, ऐसा लगेगा। जब ऐसा होता है ना तो आपको विचार करना चाहिए, क्या मैंने किसी भक्त का अपराध किया क्या, अचानक आज ये डिजायर क्यों आ रही है मेरे मन में, मैंने कभी किसी स्त्री को देखकर लगा चाह नहीं कि इसका मैं भोग करूं क्या, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका भोग करना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है 30 साल के बाद में, मतलब आपने कहीं ना कहीं किसी का अपराध किया है, पता कर लो, जानकारी कर लो, पूछो और सॉरी बोलो उनको, चरणों में गिरो उनके, वापस सब कुछ ठीक हो जाएगा तुरंत। और यहाँ पर ज़्यादा रिस्क है उसके, क्यों, क्योंकि ना मंदिर में कैसे सब लोग भक्त होते हैं और सबको ये जानकारी होती है, तो अधिकतर उनको मालूम होता है कि भाई चलो अपराध करेंगे तो भी अभी कर चरणों में गिरेंगे तो माफ करेंगे तो हो जाएगा मामला, और बाहर जाएंगे किधर तो वो तो अंडरस्टैंडिंग नहीं, भक्त तो क्या होता है, कोई भक्त है ही नहीं। यहाँ पर कैसे हैं, कुछ भक्त हैं कुछ नए लोग हैं, शायद नए लोगों को मालूम नहीं होगा और उनकी तरफ से अपराध होते रहेंगे तो बहुत बड़ा रिस्क है एक्चुअली। लेकिन आमतौर पर अगर हमारे अंदर किसी को हर्ट करने की प्रवृत्ति नहीं है तो हम भक्तों को क्या किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे, ऐसा होना चाहिए, जनरल जनरल बिहेवियर अपना ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारे उद्धार के रास्ते में एक बाधा है, नाम तो मिला है आप लोगों को, इंडिया में तो क्या रोड में भी चलता है, मेरे रोड में चलती है ना राम कृष्ण हरि, मतलब उस इंडिया में सब कुछ ओपनली होता है, तो कहीं ना कहीं आपके कान पे भगवान का नाम गिरेगा, कितना भाग्य है हमारा, अमेरिका में, इंग्लैंड में, गल्फ में कोई रस्ते में मेरे रोड निकलती नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, कुछ भी नहीं होता रस्ते पे, पब्लिक इवेंट रोड पे हो सकता नहीं है, गल्फ में जाओगे तो पब्लिक इवेंट एक ही है, नमाज पढ़ने का बस, उसके बाद में आपके नमक की मस्जिद से लेकर आपके घर तक आप जा रहे हैं नाचते हुए, नॉट पॉसिबल, ना मुसलमान कर सकता ना हिंदू कर सकता, अमेरिका में, इंग्लैंड में रोड पे आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, इसको हमने शुरू किया जाके रथ यात्रा, लेकिन बाकी कुछ नहीं होता है। भारत में ऐसा है ना, आप अरे कुछ भी हो चल रहे हैं नाचते हुए बजा रहे ताशा बजा रहे गा रहे, और इसमें कभी भगवान का नाम भी सुनाई पड़ता है, ये भगवान हमारी भाग्य की बात, तो वो भाग्य की बात हमारी इस देश में है, नाम मिल रहा है, लेकिन नाम का परिणाम नष्ट करने के लिए ये वैष्णव अपराध एक बाधा है। नाम ले लिया आपने अभी, लेकिन उससे अनजाने में जो अपराध कर बैठता है ना उसका नुकसान होते रहता है, इसीलिए बता रहे हैं सारा जो तपस्या है, दान धर्म है, तीर्थ यात्रा है, भगवान के मंदिर की पूजा है, कितने सारे आइटम्स हैं, 64 आइटम है भक्ति में, वो तो इतना मुश्किल है करने के लिए। मैं बोलूँगा अभी नीलम आपके घर में भी कल मैं राधा कृष्ण की मूर्ति लेके आ रहा हूँ, आपको सेवा शुरू करनी है, तो आप बोलेंगे बाप रे क्या कैसे करूँगी मैं, मेरे को ट्रेनिंग नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, इतना समय भी नहीं है, इतना बड़ा जोखिम मैं कैसे ले सकती हूँ, समझ नहीं कर सकते। लेकिन मैं बोला अभी चलो आपको 3 महीने हिमालय में जाके गुफा में तप करना है, तो बोले कैसे कर सकती हूँ। ऐसे कई चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ आप सब लोग कर सकते हैं, वो है भगवान का नाम। तो भगवान ने इतना आसान कर दिया आपका सारा झंझट जो है ना, इतना आसान कर दिया कि अभी आप ना जहाँ पर हो वहीं रहो और मेरा नाम लो। लेकिन अगर वो करते हुए अगर किसी का दर्द दुख देते रहे आप, अनजाने में दुख दिल दुखाते रहे, अपराध करते रहे, तो इतना आसान किया हुआ काम भी आप ही पानी फेर रहे उसके अंदर। इसलिए नॉलेज देना जरूरी है। और अगर समझो अभी आज पहली बार पता चला, बाप रे, कोई बात नहीं, जिसका जिसका किया होगा अपराध ना, जाके उनसे सॉरी बोलो, दिल से बोलो, ऐसा बच्चे जैसा नहीं सॉरी ऐसा नहीं, एकदम प्रेम से जाके हृदय से बोलो। जब पश्चाताप करेंगे भगवान आपको माफ कर देंगे। भगवान ने उसका एक फॉर्मूला दिया है, समझो आपने किसका अपराध किया तो क्या करना चाहिए, मेरे पास मत आना सॉरी बोलने के लिए, जिसका अपराध किया ना उसके पास जाना और उसको सॉरी बोलना, वो माफ करेगा तो मैं ठीक हूं। उसका अपराध करके मेरे पास आने फॉरन बोल के फायदा क्या है, जिसका किया है उसके पास जाओ। और भक्त लोग कैसे रहते ना, दादा मन पे लेते नहीं कभी, एक बार सॉरी बोल देना तुरंत उसको भूल जाते, भक्त लोगों का एक गुण होता है। तो इतना इंद्र ने वर्षा किया, इतना वर्षा किया, तो उसको बोला गया जा भक्त को पकड़ किसी को और जाके भक्त को विनती कर कि भगवान के पास ले जाओ मुझे आप। तो इंद्र गाय के पास गया, बोला माता जी प्लीज भगवान के पास ले चलो। गाय ने ऐसा बोला क्या, तुम ही थे ना वो 7 दिन वर्षा किया हमको नष्ट करने के लिए, अभी आ रहे हो चले जाओ यहाँ से। ऐसा बोला क्या, तुमने हमारा गांव पूरा नष्ट करने का प्लानिंग किया था, सबको एक साथ मार डालने का प्लानिंग किया था हमारे गाय के साथ, और आज तुम्हारी हालत खराब हो गई तो मेरे पास आए हो, कतई तौर पर खड़ा नहीं करूँगी, चले जाओ यहाँ से, मुँह मत दिखाओ कभी आके, गांव में किसी के पास जाना नहीं, कोई खड़ा नहीं करेगा आपको। ऐसे बोला क्या उसने, तुरंत ले गए भगवान के पास तुरंत, कोई गिनती भी नहीं किया कि इतना अपराध किया हमारा, इसने हमारा विनाश करने का प्रयास किया, नहीं, आया चरणों में गिरा तुरंत भगवान के पास ले गई, भगवान ने तुरंत उसको माफ भी कर दिया। ये भक्त का गुण होता है, तो अपराध करने का दुख होता है उसको, लेकिन अगर कोई सॉरी बोला ना दिल से तो तुरंत भूल जाते हैं। उधर भी एक आपको डिस्काउंट देकर रखा, अगर किसी का किया हो तो आप मिल सकते हो, दिल से सॉरी बोल सकते हो, बच सकते हो। तो ये 2 चीज़ें आपकी होंगी ना, अगर वैष्णव अपराध नहीं होगा और भगवान के नाम का जब आपसे होगा, तो भगवान ने कहा है कोई चिंता मत करो, इसी से आपको मैं तो सार में यही चैतन्य महाप्रभु की अति विशेष कृपा है। कोई कड़क नियम नहीं है, कभी भी जब कर सकते सुबह शाम दिन में रात में, बूढ़ा आदमी जवान आदमी हर समय कर सकते, तो आप करोगे सब लोग प्लीज़ करो, ये जीवन उसके लिए दिया है, नहीं तो जीवन में क्या करना है। देखो आप बूढ़े जाओगे आपको मिले, जो मरने वाले हैं आपको जी में आके मिलो उनको, ऐसा लगता है आपको जीवन वेस्ट हो गया, कुछ फायदा नहीं, जिसके लिए किया वो कोई नहीं है अभी, जो भी कुछ किया जो भी कमाया वो भी सब कुछ काम का नहीं है अभी, जो भी किया जिसका जो भी फल है उसका भी यूज़ नहीं है, जिसके लिए किया उसका भी कोई यूज़ नहीं, क्यों जिंदगी इतना समय बर्बाद किया वो भी पता नहीं, और आज मर रहा हूँ क्या हासिल किया मैंने मेरे लिए, कुछ नहीं, पता नहीं कहाँ जाऊँगा, यही सबका आम तौर पर कहना होता है। क्योंकि कुछ माँ बाप दिन रात जिंदगी भर मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, जब मरने को आते हैं ना तो कोई बच्चा सामने को देखने को नहीं आता, उल्टा टालते हैं उनको, डॉक्टर को फोन पे पूछते हैं कितना दिन है, मेरी आंखों से देखा है मैंने, सब अर्जेंट है क्या अभी आने का, कितना इमरजेंसी है, मतलब तुरंत आना पड़ेगा कि कितने दिन है उसके बाद में जा सकते हैं। ये फोन का डिस्कशन मैंने सुना हुआ है। और पेशेंट जो है वो भी ये डिस्कशन सुन रहा है। एक बार तो ऐसा देखा है मैंने कि लड़का आया है पापा को देखने के लिए, डॉक्टर भी है, डॉक्टर से ऐसा बात कर रहे हैं वो कि मरीज को सुनाई पड़ रहा है, थोड़ा दूर है वो, लेकिन बातें पापा को भी सुनाई पड़ रही है कि मेरा बेटा डॉक्टर को पूछ रहा है कितने दिन बाकी है इसके। तो बोला इतना जिंदगी का समय मैंने बर्बाद किया इन लोगों के पीछे ये सुनने के लिए। तो बोलता है भैया, चला जाता है डॉक्टर, राउंड पे आता है, बोलता है मुझे ना आज ही मरना है, कल तक भी वेट नहीं करना, आपने बताया ना उनको 8 दिन नहीं करके, 8 दिन भी मुझे रुकना नहीं है, मुझे आप ना आज ही मरने की व्यवस्था करो, ऐसी घटिया जिंदगी मुझे जीनी ही नहीं है एक दिन भी, और इनके लिए मैंने जिया इतनी जिंदगी, वो मुझे आज एक दिन जीने की इच्छा नहीं। तो गया ना जिंदगी बर्बाद हो गया ना, इतना समय बर्बाद किया सबके पीछे। तो क्या आप चाहते हो क्या कि आप सब लोग उस स्थिति में आ जाएं कि आपको भी यूजलेस लगे जिंदगी अपनी, कुछ भी नहीं किया सिर्फ खुद के लिए और सब कुछ वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, और अभी मरने के बाद क्या होगा पता नहीं, ऐसा आपको सबको आना है क्या? आई डोंट थिंक, आप अगर बुद्धिमान हो तो आपको लगेगा कि देखा जाएगा आगे क्या है, ऐसा नहीं लगेगा आपको, तो उसके लिए आज से तैयारी करनी पड़ेगी। मरने के समय पे अगर आपको लगता है कि कृतार्थ हो गए हम, जिंदगी सफल हो गई हमारी, ऐसी भावना अगर आपके मन में आना चाहते हो, आप लाना चाहते हो मन में, तो आपको आज से कुछ करना पड़ेगा। ऑन द स्पॉट वहाँ पर नहीं कर सकते, वो आदमी क्या कर सकता है उस समय पे, बस मरना एक ही ऑप्शन है उसके पास, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपको अगर पता है, दुनिया को देख चुके हैं आप, तो आज से आप कुछ करेंगे तो आपको शायद भगवान की कृपा से जिंदगी के एंड में ऐसा मौका आएगा, आप कहेंगे मैंने मेरा जिंदगी है ना परफेक्टली जी लिया है, अभी मैं मर कर भगवान के धाम पे जाने का इंतजार कर रहा हूँ, बस आई एम वेटिंग टू डाई एंड गो टू माई गॉड, मीट माई गॉड, वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग, सो हैप्पी एंड सक्सेसफुल, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं है, कोई दर्द नहीं है, किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, सब सेटिस्फैक्ट्री हूँ पूरा, और अभी मैं केवल मरने का खुशी से मरना चाहता हूँ, भगवान से मिलना चाहता हूँ। ये स्थिति आपको लानी होगी आपके जीवन में, तभी आप अपना जीवन सफल हुआ ऐसे बोल सकते हो। क्या ख्याल है आपका? हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।